आज जो मर्द फजर के लिए उठ के नहीं जा रहा, कल खुदा ना खास्ता कोई दुश्मन हमला करते तो जिहाद के लिए जाएगा? आज हम अपने बेटों और अपने जवानों को ही देख ले, फजर के लिए नहीं उठते, ईशा के लिए मस्जिद में नहीं जा रहे, अगर तो कल रात को दिल का दौरा पड़ जाए खुदा ना खास्ता घर में माँ या बाप को, तो उठ के जाएंगे डॉक्टर के पास? मुझे किसी की बात नहीं भूलती, जब भी ये जिक्र होता है तो अपने बच्चों को अक्सर कहते थे, जब फजर के लिए उठाते थे तो बच्चे उठ तो जाते थे लेकिन आवाजों पे ज्यादा चार छे, तो उनके बाप उनको कहा करते थे कि अगर किसी दिन रात को मुझे दिल का दौरा पड़ जाए तो तुम लोग तो नहीं उठोगे, ये तो मैं पीछे पड़ के उठाता हूँ ना। आज हमने जितनी ऐश दी अपनी औलादों को, आज हमने उनको जितनी लग्जरीज दे दी, दी मोहब्बत के नाम पे, वल्लाही उनके साथ दुश्मनी बन गई, पेट का पानी नहीं हिला सकते। बूढ़ा बाप आज भी एक्टिव है जवान बेटे की निस्बत, जवान बेटी से ज्यादा बूढ़ी माँ भाग भाग के काम कर लेती है। वो नस्लें जो एक बहुत बड़े मकसद के लिए हमें मिली थी, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, कुन तुम खैर उम्मत अखरिजत लिन्नास, लोगों तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम तो लोगों के लिए निकली थी, तामुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, तुम तो लोगों को नेकियों का हुक्म दोगे बुराई से रोकोगे, उस उम्मत को हमने इस दुनिया का गुलाम कर दिया, बचपन से लेके जवानी और जवानी से बुढ़ापे के मराहल देख लीजिए, उठ जाते हैं हम आधी रात को भी, शर्त है कि कोई पाकिस्तान से आ रहा है और एयरपोर्ट पे जाके क्याम करना है, दो दो घंटे भी खड़े हो जाते हैं अपने मेहमानों को लेके आने के लिए। हम भी जिहाद करते हैं, चार चार छः छः दिन नहीं सोते रातों को, जब कोई हमारे गेस्ट आते हैं तो आज उनको इधर घुमाने जा रहे हैं तो आज उधर जा रहे हैं, हम भी दिल खोल के माल लगाते हैं, कब जब कोई बेटों और बच्चों के ससुराल में आया होता है और उनको खुश करने के लिए माल लगाते हैं, कभी हम इस आईने में अपने आप को देखे? अल्लाह सुब्हान तआला ने सोचने के 8 नुक्ते दिए हैं और दिन में आप हर मौके पे देखिए कि इस वक्त इनमें से कौन सी चीज मेरा खुदा बना हुआ है। खुदा क्या है? अल्लाह के मुकाबले में जिसको बड़ा कर ले, अल्लाह का हुक्म एक तरफ, दुनिया का हुक्म एक तरफ। गुना किस लिए करते हैं? गुना कह के थोड़ी करते हैं, मजबूरी कह के करते हैं। ये बेटी के ससुराल का मामला, ये बेटी की सास की नाराजगी का डर है, ये रस्म इसलिए करनी है कि दामाद खुश हो जाए, और ये इसलिए करना है कि भाई का एक ही बेटा है, अगर मैं मेहंदी की थाली नहीं पकड़ूंगी तो भाई तो कहेगा तुमने सिला रहमी छोड़ दी। खुदा की बना, अल्लाह की नाफरमानी अल्लाह के दीन का नाम लेके करते हैं कि जी फिर कतअ रहमी से तो इस्लाम रोकता है, ये पता ही नहीं है कि सिला रहमी और कतअ रहमी क्या होती है, और हम रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। वल्लाही अल्लाह जब हमें पकड़ता है ना, देखिए चंद छोटी सी बातें, अल्लाह ताला अपने फैसलों को खुद बेहतर तौर पे जानता है, हम किसी पे कोई फतवा नहीं देते, लेकिन अल्लाह का एक असूल समझ लेते हैं कि जब हम अपनी खुशी से अल्लाह के रास्तों में नहीं निकलते ना, बिन अल्लाह व रसूल ही व जिहाद फी सबील ही के लिए, जब हम अपनी खुशी से अपनी विल से अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे या अल्लाह के दीन को सीखने सिखाने या उसको फैलाने के लिए नहीं निकलते, तो अल्लाह ताला किसी मुश्किल में डाल के हमें निकाल फिर भी लेता है। पैसा अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलेगा ना, वो किसी डॉक्टर की जेब में जाएगा, अल्लाह कहते बचाओ किधर बचाते हो, याद है तुमने उस दिन इधर से टंडी मारी है ना, दो आप डॉक्टर को, इधर से बचाएंगे ना किसी वकील को देना पड़ जाएगा, कोई मुकदमा पड़ जाएगा, राह जाते टक्कर पड़ेगी, पता चला 1000 पाउंड का बिल आ गया, ये क्या होता है? तुम बच के नहीं जा सकते, तू बचा बचा के न रखे से कि तेरा आईना वो आईना है जो शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह है आईना सास में, कहां जाएंगे, नहीं बच सकते। इस छोटी सी जिंदगी की हकीर सी पूंजी रब को दे दे और मुर्दे की तरह अपना आप नहलाने वाले के हाथ में दे दे कि अल्लाह तूने मुझे जहां इस्तेमाल करना है कर ले, नो फ्रिक्शन एट ऑल, बोनलेस, कोई हड्डी बंदे मोमिन के जिस्म में होती नहीं है अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में। तावीले कर लें, फतवे पूछ लें, आपको हर काम की तावील मिल जाएगी, आपको हर गुनाह का फतवा मिल जाएगा, यहाँ ये जायज़ है तो यहाँ ये जायज़ है, तो एक जायज़ है तो दूसरा जायज़ है, और इस नाम पे जायज़ है, आप जिस लिस्ट का मौलवी ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, चूज कर ले नो प्रॉब्लम, लेकिन अल्लाह आपका वो मामला दूसरी तरफ क्लियर कर देगा। जो थोड़ी सी बात मैं अल्लाह की समझी हूँ, जिधर से हम अल्लाह से जरा सी डंडी मारते हैं ना, वो दूसरी तरफ डंडा बन के पड़ती है सर पे, چیخیں نکلتی ہیں، پھر اور روتے ہیں، ہم بیمار ہیں، ہم پریشان ہیں، آپ کو کیا پتا کیا مجبوری ہیں، ہمیں تو بتانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، اللہ سے معاملہ سیدھا کر لو، دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی جنت بنا دے گا، ایک ایک کر کے مشکلیں ٹلتی جاتی ہیں اللہ کی توفیق سے، اور اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے آسانیاں آتی ہیں۔ آپ میں سے کسی کو اپنا کوئی پچھلا سفر یاد ہو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں، کیسے شروع میں مشکل ہوتا تھا بعد میں آسان ہو گیا۔ میرے پاس تو الحمدللہ ایسی بہت ساری کہانی ہے، جو سسٹرز اور جو قرآن کے ساتھی ہوتے ہیں وہ اپنی کہانیاں سناتے ہیں کہ وقت شروع کا اتنا مشکل تھا کہ اتنی مخالفت صرف ہمارے دین سیکھنے کے لیے آنے پہ، چوری چھپے کہتی ہیں ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ ایک کسی کی بات یاد آتی ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا تھا کہ زیادہ سردی میں نہیں جا سکتی باہر، پتہ نہیں لنگز ہی فریز ہو جائیں گے، لیکن یہ چیز ہی ایسی ہے، ایک دفعہ آپ دیکھیں، ہم صرف ایک آیت کو دیکھ رہے ہیں ابھی، اور واللہ ہی اس وقت میں کوئی تفسیر نہیں کر رہی، کرنی ہے تو آپ سن لیں اس کی سبیل الجنہ کے لنک پہ جا کے ان آیتوں کی تفسیر، میرا خیال ہے ایک گھنٹے سے تو زیادہ کی ہوگی، کیونکہ تفسیر اور چیز ہوتی ہے، جب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں، آپ سب تو میرے ساتھی ہیں، جس طرح ہم بات سن رہے ہیں بس ہم سن رہے ہیں، ایسے ہی میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ اب آپ کو جو مزہ آتا ہے، جو آپ کا دل کھلتا ہے اس محفل میں، آپ کو کیا پرواہ گھر جا کے ڈانٹ پڑنی ہے کہ آپ کہتے کھا لیں گے۔ دیکھیے جوانوں کو ماں باپ پہلے دور میں سینمے سے روکتے تھے، یاد ہوگا آپ کو، اب تو روکتے بھی نہیں ہیں، گھر کے دادا ابا چپو سسر بڑا برا مناتے تھے کہ کوئی سینمے میں جائے یا عورتیں بازاروں میں جائیں، لیکن جو جاتے تھے ان کو مزہ آتا تھا نا، چلے تو جاتے تھے، بعد میں آ کے چاہے ڈانٹ پڑی یا چھپ کے آئے، جو بھی ہے بیٹھے، مزہ آیا نا ان کو تو کر لیا، ہمیں تو آ رہا ہے مزہ، گھر جا کے ڈانٹ بھی کھانی پڑی تو کھا لیں گے، پھر کیا بڑی بات ہے۔ لیکن جب پتا چل گیا کہ یہ راستہ خوبصورت ہے، اس کو چھوڑیں گے تو نہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان جب اللہ کے راستے کے مزے چکھ لیتا ہے نا، تو اس کو سچی بات ہے کسی اور چیز میں مزہ ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اتنا بڑا یہ فیصلہ ہے، جیسے آپ کوئی ایک چیز چکھ لیتے ہیں نا، تو اس کے بعد پھر دوسری کوئی چیز اس سے ہلکے درجے کی آپ کو اچھی نہیں لگتی، ایک نرم کپڑا پہننے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، تو موٹا اور سخت کپڑا آپ سے نہیں پہنا جاتا جو ساری زندگی پہننا ہوتا ہے۔ اللہ کے راستوں میں جو بندے کو تکلیفیں آتی ہیں نا، جو اس میں مزہ ہے، جو اس میں سکون ہے، جو اس میں خوشی ہے، وہ کسی اور راستے میں نہیں آتی۔ بی بی سمیہ کا نام سنا ہوگا، پہلی شہیدہ تھی اسلام کی، اس اسلام کی تاریخ کی بھی ایک عجیب ہی کہانی ہے، وہی تو نبی بھی اتری، اقرا باسم ربک الذی خلق، لیکن وہی کی تصدیق کرنے والی پہلی عورت تھی، مرد نہیں تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زملونی زملونی، چادر دے دو چادر دے دو، بی بی خدیجہ نے آپ کے اوپر سب سے پر ایمان لائی، اور آپ دیکھیے کہ پہلی شہیدہ ایک عورت، بی بی سمیہ، ابو جہل کی لونڈی اور خاندانی لونڈی، ان کے شوہر یاسر تھے، بیٹا عمار تھا، یہ خاندان جب مسلمان ہوا، ابو جہل کو تو تیش آ گیا نا، اس نے دھمکیاں دی ہوں گی، کیا کچھ نہیں کیا، نہیں، اخیر اس ظالم نے بی بی سمیہ کو دو اونٹوں سے باندھا، ایک پاؤں ایک اونٹ سے اور ایک دوسرے سے، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں پھرا دیا، اور تیر مارا جو ان کی شرمگاہ پہ لگا کہ جسم دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس وقت بھی بی بی سمیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، جان لے لی، مسکراہٹ نہیں چھین سکا، کیونکہ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تخاف ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرشتے تسلیاں دیتے ہیں، فکر نہ کرو، یہ تھوڑے دن کی مشکل ہے، اس کے بعد خوشیاں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ سب پیارے ہیں تو کرو کیا۔ اب آیت کے آخری حصے پہ چند باتیں کر کے ہم آگے چلتے ہیں، کیا ہے؟ احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ۔ اب اتنی بات تو کلیئر ہو گئی ہے نا کہ اللہ کے مقابلے میں یہ چیزیں پیاری کیسے ہوتی ہیں پریکٹیکلی۔ اگر ہے ایسا، کہتے ہو کہ ہاں نہیں اللہ تجھے تو منا لیں گے، یہ رشتہ دار روٹ گئے تو یہ نہیں مانیں گے، مان لیا، دیکھیں گے حرام حلال جو بھی ہے، بچے تو پال لیں، دیکھیں گے سود کے معاملے جب ہو گئے، پہلے اپنے کام تو ہو جائیں۔ کہا اگر ایسا ہی ہے تو فتح ربسو حتی یاتی اللہ بامری، پھر انتظار کرو، بی اویئر، بی پریپیئر، منتظر رہو، کس کے؟ حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لیا۔ اور مفسرین کہتے ہیں یہاں بیامری ہی سے مراد ہے عذاب کا فیصلہ. تم اللہ سے بڑے ہو, نعوذ باللہ, تم اپنی من مانی کر رہے ہو نا, کر لو, شابت جاؤ, پھر دیکھنا جب اس کا انجام آئے گا تو پھر چیخیں نکلیں گی. حتیاتی اللہ بیامری, اور لفظ یاتی کو آپ ہائی لائٹ کر کے دیکھیں, آئے اللہ اپنے حکم کے ساتھ, یہ مراد ہے. اور جب اللہ آ جائے کسی کے اوپر اس کی پکڑ کے لیے, تو پھر آپ بتائیے کہ وہ بچے گا. ان ربک لبالمرصاد, اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں کہتے ہیں کہ ان ربک لبالمرصاد, اے انسان تیرا رب تو تیری گھات لگائے ہوئے, وہ تو تیرے مناسب موقع کے انتظار میں ہے کہ تجھے کہاں پکڑوں کہ تیری چیخیں نکل جائیں. کبھی مہلت دیتا ہے, کبھی تھوڑی سی ڈھیل دیتا ہے, لیکن جب وہ آتا ہے تو پھر بندہ بچتا نہیں ہے. اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان قوم کو, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ کیا بات ہے ادھر, جب بندہ خود نہیں آنا چاہتا نا اللہ کے راستے میں, تو اللہ آنے کی توفیق ہی چھین لیتا ہے, یہ مراد ہے. کئی دفعہ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے اتنا بلایا, اتنی دفعہ کا پیار سے بلایا, دعوت کی, کھانا پکایا, تحفے دیے, محبت کی, کبھی ان کی نافرمانی کی جگہوں پہ بھی سوچ سے چلی گئی کہ یہ آ جائے, یہ ایکسیپٹ کر لے اس دعوت کو, یہ نہیں آئے. کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا, اپنے بچوں میں کبھی کوئی ہوتا ہے اس کے دل پہ بات ہی نہیں آتی آپ کی, کیوں نہیں آتا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. آپ چاہ رہے ہیں, وہ نہیں چاہ رہا ابھی. آپ اپنے بچے کو کھانا کھلانا چاہیں اور وہ نہ کھانا چاہے, ایک لکما بھی نہیں کھائے گا, آپ ایک کھلائیں گے وہ الٹی کر کے دو نکال دے گا بھائی, پھر مائیں کہتی جاؤ پھر نہیں تو نہ سے. جب تک آپ کے اور میرے اپنے اندر اس چیز کا یقین نہیں ہوگا نا کہ یہ دعوت میرے لیے, یہ آج کا جو درس رکھا ہے سمینا نے, یہ صرف میرے لیے رکھا ہے, آپ نہیں آئیں گی. ہر نیکی کے موقع کو یہ سوچا کریں, یہ اونلی فار می ہے, یہ کام صرف میرے لیے کیا گیا, اور اگر میں نہ گئی تو یہ کام ہی نہیں ہوگا. پھر آپ آئیں گے, آپ جو آئے آپ کے آرام سے تو نہیں آئے ہوں گے نا, کتنے کام تھے آج آپ کو, کوئی فارغ بیٹھا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے مجھے, کل کے شاید ایک دن کے نوٹس پہ آپ لوگ آئے ہیں, کئی چیزیں منمنٹ کر کے آ گئے ہیں نا, اور آپ میں سے ماشاء اللہ مجھے کافی چہرے دکھ رہے ہیں جو صبح بھی تھے. اللہ لے آیا نا, اللہ سب کو نظر سے بچائے, بچے بھی ہیں, شوہر بھی ہے, سب کچھ ہے. میرا خیال ہے سب سے آخر میں جو لوگ نکلے تھے وہاں ہال سے, وہ سب سے پہلے یہاں موجود تھے ماشاء اللہ. اللہ لے آیا نا, اور نہیں ایکچولی, اور ہونا کیا تھا, بال فرض ہم نہ آتے ادھر, میں کہتی میں صبح بولی ہوں 3 گھنٹے, مجھ سے نہیں اب بولا جاتا, تو اللہ نے توفیق چھین لینی تھی. آپ ایک ریکارڈنگ سن لیتے, کسی اور کو, آپ میں سے کوئی میرے سے بھی اچھا درس کر دیتا, میرا حصہ چلا گیا. میں نے کہا نہیں میں نے جانا ہے تو مجھے جانا ہے. لیکن یہ آج کا دن جو تھا مجھے چبھ رہا تھا کہ ابھی دورہ قرآن کل شروع ہو رہا ہے, تو آج کی شام کیوں خالی رہے, اور اللہ ان کو جزا دے سمینا نے. میں نے کہا سمینا آپ کچھ کرنا چاہے کر لیں, میں نے ان کو نہیں کہا بلکہ ایسی, آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا, ایسے میں نے ان سے کہا کہ صبح بھی درس ہو رہے ہیں شام بھی ہے. میرا دل ہے کہ نئے لوگوں کو, کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہے نا ادھر, ابھی بات بھی پوری نہیں گئی ہوئی سب تک, سب ہمیں جانتے بھی کوئی نہیں ہے, کیونکہ جہاں بندہ رہتا ہے وہاں 100 نسبتیں آنا جانا لگا ہوتا ہے. تو میرا دل ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے اس شہر کو چنا ہے, تو کم از کم ہم میسج تو کنوے کریں. اب آپ سب سے پہ میسج کنوے اگر ہو گیا, یا آپ کو اینڈ پہ کچھ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ ہو رہا ہے, ایک بھی نہیں آپ میں سے آ سکتا کسی مجبوری پہ, کسی پہ, آئی ڈونٹ مائنڈ, مجھے کوئی گلا نہیں. ہاں مجھے اپنے سے گلا ہوتا اگر آپ میں سے کوئی ایک آنا چاہتا ہے اور میرے یا ہمارے آپ تک نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ نہ آئے. وما علینا الا البلاغ المبین, بس سیدھی سی بات ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ سنڈے کی شام خالی ہے, تو کہنے کی میں اپنے گھر پہ رکھ لوں. میں نے کہا ہوسٹ ویلکم, اور الحمدللہ ارم سے مشورہ کی ان کا رکھ لیں, اور آپ سب آ گئے. آپ سوچئے کہ آج کے اب تقریباً 52 منٹ کی ریکارڈنگ ہوئی ہے ابھی تک. ان 52 منٹ میں اگر آپ سسٹرز میں سے کسی ایک کو صرف فائدہ ہو, ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں کہ آج کی اس گفتگو سے کسی ایک کو کچھ فائدہ ہوا؟ الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کو ہوا ہے, تو پار لگ گیا نا آج کا دن. سو رہے ہوتے گھر میں ہوتے تو کر کیا لینا تھا, اگر ہم یہاں نہ آتے تو اس وقت کیا کر رہے ہوتے, زیادہ سے زیادہ وہی کر رہے ہوتے جو آنے سے پہلے کر رہے تھے اور جانے کے بعد بھی کرنا ہے. تو ٹیک سم بریک فور یور سیلف,
بڑے ضروری کام چھوڑے گھر میں, بیٹوں سے ناراضگی نہیں.
कुछ मिला उसके जवाब में?
सब मिला
मिला ना, तो दिल ठंडा है ना।
बल्कि मतलब छोड़ने दरवाजे तक खोल दिया था, कहना काम भी चले अच्छे ही हुआ आप आ गई, कम से कम आप दर्द सुनने की मैंने कहा चलो बस
यही जुमला हम में से हर एक को हमारे दोस्त और हमारे प्यारे कहेंगे, शर्त ये कि हम आते रहें। तो आज हम सब ने अपने आप से ये डिसाइड करना है, अब रमजान बिल्कुल अल्लाह ने चाहा तो दरवाजे पे खड़ा है, इनमें से कौन सा उजर मुझे रोक रहा है, रमजान के अंदर क्या करना है, क्या कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल आप में से किसी को नहीं पता, नहीं पता तो आप कुछ भी सुने इधर, इनको वेब पेज से वो लेक्चर्स दिखा दें। रमजान से पहले के नाम पे एक टैब आपको दिखेगा दौरे कुरान के वेब पेज पे, तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप जाके रमजान की प्रेपरेशन के लेक्चर सुन सकते हैं, 10 टिप्स टू मेक दिस रमजान बेस्ट, और बहुत कुछ है। रमजान शुरू हो रहा है, आपको अगर पहले मैसेज नहीं भी गया, कुछ लोग लेट भी आए, तो उसके लिए ये कि आप सबको एक दावत है, सिर्फ एक दावत है ना, तो ये रिक्वेस्ट है, यकीन करें। ये कोई वो बात कहते हैं आपसे इल्तजा है कि आप आइए और दर्द सुनिए, कोई इल्तजा नहीं है, इट्स एन ऑनर। अल्लाह ताला की तरफ से जब दावत मिलती है तो वो बड़ी ऑनरफुल दावत होती है, तो ये एक दावत है। आपके शहर में कई लोग और भी दर्स कर रहे होंगे, आते भी होंगे, मैं नहीं कहती कि आपके शहर में कोई दौरे कुरान नहीं हो रहा, कभी नहीं हुआ या आपने कभी नहीं सुना, मुझे इससे कोई इनकार नहीं है, ना मैं इसके ऊपर हूँ कि करें, आपका जहाँ दिल चाहता है जाएं, जो चाहे कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं तो वहीं करते रहें। लेकिन अगर आपको ये बात समझ आ रही है, दिल चाह रहा है कि चेंज है, तो मोस्ट वेलकम। कल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाकायदा दौरे कुरान शुरू कर रहे हैं, आज तक हमने कल के सेशन में हमने क्या किया, कोई था आप में से कल क्या किया था तो बताइए, आप थे वहाँ, माशाल्लाह। जीरम कल हमने क्या किया बहनों को बताएं,
कल तो बड़ा लाजवाब था, बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छा लगा।
आप देखिए कि अल्लाह का कलाम है ये सब, हमने इस साल का जो दौरा कुरान लिया ना, एक तो था कुरान, वो तो नहीं इंशाल्लाह बदलेगा कभी भी, और अल्लाह ना करे कि हमें तौफीक हो कि हम बदलें, लेकिन एक आदत रही है अल्लाह के हुक्म से, ये भी कि जो बात भी करते हैं ना उसके अंदर हर दफा एक डिफरेंट एंगल लेते हैं। जैसे कल मैंने अपने पिछले 2007 से लेके 2012 तक के जो हमारे 6 दौरे कुरान है सबका थीम थोड़ा थोड़ा बताया था साथियों, क्योंकि जब आप वेबसाइट देखते हैं तो वहाँ इतने दौरे कुरान पढ़े हुए, तो आप कहते हैं कौन सा सुने, तो हर एक का थीम फर्क है, वो तो छोड़े, लेकिन इस साल का जो थीम है वो अल इंसान, एक रब इसम रबी कल लजी खलक खलक अल इंसान अमिन अलग, कि हम हैं क्या। 2 दिन के इस लेक्चर से आप सिस्टर्स को कुछ महसूस हुआ कि हम कितने कीमती हैं। सबसे पहले इंसान की जो सबसे छोटी इकाई है ना वो सेल है, सेल, खुलिया, सेल आपने लफ्ज सुना होगा, जैसे घर ईंटों से बनता है ना, कोई भी चीज बनती है तो उसका एक रॉ मटेरियल है। इंसान के जिस्म में सेल्स होते हैं, कैसे हैं? हर सेल के अंदर डीएनए नाम की एक चीज होती है जिसके अंदर इंसान की पूरी मेमोरी होती है। रेड ब्लड सेल्स के अलावा जिस्म के हर सेल में ये पाया जाता है। बेसिकली ये हमारे बॉडी के पूरे निज़ाम को कंट्रोल करता है। इसके अंदर क्रोमोसोम और प्रोटीन होते हैं। आप अगर इसके पिक्चर्स ऑनलाइन पे जाके देखें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे जुड़ाव चूड़ियाँ, रंग बिरंगे, और हर जिस्म के हिस्से के अंदर इनकी मुख्तलिफ फॉर्मेशन होती है। ये ऐसी है कि जैसे कंप्यूटर के अंदर आप लोग कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं, ये किसने बनाया? अल्लाह ने बताया ना। हम बहुत कम अपने बारे में सोचते हैं। इंसानी जिस्म 1 ट्रिलियन से शायद खुलियात से मिलकर बने, और इन खुलियों का साइज इंसानी तसव्वुर से बाहर है। मसलन एक पिन के सर के जगह पर, यानी एक पिन है ना, जैसे आप सोचे कि इसकी नॉब अगर मैं निकाल के आपको दिखाऊं, इस नॉब के सिरे पे इतनी सी जगह पर 10 लाख खुलिये बासानी समा जाते हैं। 10 लाख खुलिये होते हैं जिस्म के इतने हिस्से में, तो पूरे जिस्म में कितने ट्रिलियन है। एक सेल को जब आप काटते हैं ना, और ये सेल आम आंख से नहीं दिखता, आम माइक्रोस्कोप से भी नहीं, स्पेशल माइक्रोस्कोप से, जाहिर है कि इतनी जगह पे लाखों आ रहे हैं तो ये छोटे कितने होंगे। तो जब आप उसको बड़ा करते हैं ना, तो ये उसका अंदर से हिस्सा ऐसा होता है। आपको तो ये कश्ती सी दिख रही होगी ना, लेकिन ये हमारा सेल जब कटता है ना, तो आप देखें वो इसमें एक तरफ स्लीपर्स दिख रहे होंगे, कहीं आपको ये कॉर्न पड़े हुए दिख रहे हैं, यानी इस एक सेल के अंदर फिर फंक्शनिंग है। जैसे खाना काबा के गिर्द घूमने का आपने मंजर देखा हुआ है ना, हर सेल के अंदर यही मंजर है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये इस तरह से यूं घूमते रहते हैं। मैं कहती हूँ हर सेल कह रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, एक के गिर्द घूमो। ये हमारे जिस्म के अंदर हर वक्त हो रहा है, हम इस पे कभी गौर ही नहीं करते। मैं सोचती हूँ जिस रब ने इतना खूबसूरत हमें बनाया और इतना कॉम्प्लेक्स बनाया, क्या उसकी नाफरमानी करने को दिल चाहता है? लेकिन हमारा हाल क्या कि वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी। न्यूरॉन दिमाग को बनाने वाले सेल्स हैं, जो सेल्स मिलके दिमाग को बनाते हैं वो न्यूरॉन है। इसके अंदर न्यूरॉन का ये मसल है, हमारा मरकजी आसाबी निज़ाम दिमाग और रीढ़ की हड्डी न्यूरॉन से मिलकर बना। आसाबी निज़ाम में खुलियों की तहरीक की रफ्तार 170 मील फी घंटा है, यानी हमारी बॉडी में हर वक्त इंफॉर्मेशन पास हो रही हैं, तो हर वक्त हमारे जिस्म के अंदर मैसेजिंग हो रही है। टेक्स्ट होते हैं ना आजकल, जैसे या आपने कभी मशीनों में रखे हुए दिल को देखा होगा, वो उसकी वाइब्रेशंस होती है, इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर इतनी तेजी से रफ्तार है कि 170 मील फी घंटा की रफ्तार से हमारे जिस्म के ये जो असाब है इसमें ये मूवमेंट्स हो रही है, और इससे इतनी एनर्जी पैदा होती है कि 10 वॉट का एक छोटा सा बल्ब जला सकते हैं। ये सब कौन कर रहे हैं? इनको ब्रेन वेव्स कहते हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर ये हर वक्त चल रही है। ये देखिए, ब्रेन वेव पर तिलावत कुरान का असर, यानी अब साइंस ने इस हद तक तरक्की कर ली है कि वो हमारे जिस्म के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो किसी शख्स को तिलावत सुनाई गई और देखा गया कि उस तिलावत का उसके ब्रेन पे क्या असर होता है, तो ये इफेक्ट्स देखिए। सबसे पहले दिमाग की जो बैलेंस फ्रीक्वेंसी है ना, वो इवन हो गई। जब एक बंदे को तिलावत सुनाई गई तो उसके दिमाग में इस तरह पुरसकून लहरें उठी। सेल्स की खराबी को और निज़ामुल अमल को दुरुस्त करती है। जब तिलावत सुनाई गई तो सर के अंदर दिमाग में कुछ सेल्स जो कभी कभी काम करना छोड़ देते हैं ना, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अंदरूनी सुकून फ्राहम करने के साथ असाबी कशीदगी दूर करती है। बाज़ दफ़ा आप स्ट्रेस फील करते, मसल खिंचे हुए हैं, पट्ठे खिंचे हुए हैं, जब तिलावत सुनाई गई तो उस शख्स के जो मसल्स थे वो रिलीव हुए। आप कोई मसाज करते हैं, कोई दवाई लगाते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन कुरान की तिलावत का ये असर हुआ। रवैये और मिजाज की खराबी घबराहट, बेचैनी, तैश और गुस्से को कम करने में मदद करती है। ये नेगेटिव चीज़ें हैं ना, तो कुरान की तिलावत से ये सब कुछ कम हुआ। तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करती है, यानी हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, वो कुरान की तिलावत को सुनने से उजागर होती है। तभी तो आप देखिए कि जूं ही कुरान या नमाज पढ़ने बैठते हैं तो आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं, हमारी मेमोरी ठीक हो जाती है। उस वक्त आप देखें कि जब हम नमाज में होते हैं तो रखी हुई चाबियां याद आ जाती हैं, क्यों? कि वो दिमाग को सुकून मिल रहा होता है, तो हमारी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो अपनी जगह पे आती हैं। मेल जोल और ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद करती है। अगर आपका अपने किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त साथी से ताल्लुक बिगड़ा हो, खुद भी कुरान पढ़ें, उनको भी कुरान की दावत दें। कुव्वत इरादी को मजबूत करती है, यानी डिसीजन पावर नहीं होती ना लोगों के अंदर, वो आने लगती है जब इंसान कुरान सुनता है। यानी अब आपको शायद इस चीज़ों में कोई इंटरेस्ट हो रहा है कि नहीं, लेकिन आप सोचिए कि जिस रब ने हमें बनाया ना, उसने हमारे अंदर जो सिस्टम सेट किया ना, जब हम उसको अल्लाह की मर्जी पे रखते हैं ना, तो हमारी सारी सलाहियतें उजागर होती हैं। आपको पता है कि हमारे असलाफ इमाम बुखारी और उनके इर्द गिर्द के लोग इतना काम कैसे कर गए? एक एक शख्स की अगर औसत किताबों, इमाम बुखारी की किताबों का अगर जायजा लिया जाए, तकरीबन 150 के करीब उन्होंने किताबें लिखी और अपने हाथ से लिखी, और कहते हैं कि अगर उनके लिखे हुए सफ़ों को कंबाइन करें तो एक दिन में 60 सफ़े बनते हैं, हाथ से लिखे, फोटोकॉपी नहीं। ये इनकी सलाहियतें क्यों बढ़ती थी? इसलिए कि उनकी ज़िंदगी कुदरती थी। आज हमने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ये मामला किया, ये जो याददाश्त है, आप सुने तो आप खुद हैरान हो कि किस तरह आज हमारे बच्चों के, हमारी अपनी याददाश्तें ख़राब हैं, क्योंकि हमने फितरत से निज़ाम को तोड़ा। फिर दूसरी से किस्म के सेल्स रेड सेल्स होते हैं, हमारे जिस्म में पाए जाते हैं। 1 सेंटीमीटर खून में तकरीबन 3 मिलियन रेड सेल्स होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 3 मिलियन सेल्स। और आपको पता है कि एक सेल खराब हो जाता है तो कैंसर शुरू हो जाता है उससे। ब्लड कैंसर का नाम आपने सुना होगा, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। ल्यूकीमिया, ये इस वाइट सेल की कमी पेशी की वजह से होता है। प्लेटलेट्स होते हैं, यानी क्या अंदर कहानी है। और ये वाइट सेल्स क्या करते हैं? हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। जिस्म में जो ही कोई जरासीम जाता है तो अंदर से ये वाइट सेल जाके उसके साथ लड़ते हैं, ये उसको हमारे जिस्म में नहीं आने देते। जख्म के ऊपर जो पस बनती है ना, वो इन वाइट सेल्स की लाशें होती हैं। ये मर जाते हैं उसे लड़ते लड़ते कि हम तुम्हें इस जिस्म में नहीं आने देंगे। किसने इनको अकल दी? अल्लाह ने अकल दी। खून के सफेद खुलिए किस तरह होते हैं? एक नॉर्मल बालिग फर्द के खून में 1 माइक्रोलीटर के अंदर तकरीबन 4000 से 10000 तक खून के सफेद सेल्स पाए जाते हैं, वाइट सेल्स। फिर आप ये देखिए कि चर्बी के सेल्स, हमारी बॉडी में जितनी एनर्जी है वो ये फैट के सेल्स के साथ होती हैं, ये जिस्म को एनर्जी देते हैं। अब ये मैं बोल रही हूँ तो इस वक्त मेरे ये फैट सेल्स बर्न होकर मुझे एनर्जी दे रहे हैं। रोजे की हालत में हम बिल्कुल थक जाते हैं ना एंड पे, तो क्योंकि हमारे जिस्म की रिजर्व एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। फिर इसी तरह देखिए कि सेल्स की जब रैंडम ग्रोथ होती है ना तो कैंसर बनता है, ये कैंसर का सेल है। अब आप बताइए कि ये सब कुछ जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्या दिल में आता है कि अल्लाह ने पैदा किया? हम अल्लाह के बारे में कितना सोचते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं ना हम दुनिया में। अल्लाह एक सेल को कहता है तू भी नाफरमान हो जा, और उसकी अब नॉर्मल ग्रोथ शुरू होती है और आखिर उसका अंजाम डेथ है। तो हम अल्लाह के बारे में कितना कम सोचते हैं, गौर व फिक्र तदब्बर। ये आपको हम साइंस नहीं आपको पढ़ाना चाह रहे, लेकिन आपको बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कितना खूबसूरत बनाया, और अगर हमारे पास उसी की बात के लिए वक्त ना और हम उसके तकाजों को छोड़कर दूसरे दुनिया के तकाजों में पड़ जाएं तो आप देखिए नाफरमानी की हद है ना। इसके अलावा और बहुत डिफरेंट थिंग्स हैं जिसमें हम लोग इसको साथ साथ लेकर चलेंगे। दुआ ये करें कि हमें तौफीक मिल जाए, अल्लाह ताला हम सब की इस कोशिश को कबूल फरमाए। जज़ाकअल्लाह खैर। सुबहानकअल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।